نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفلف والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ایسی تخلیق فرمایا ہے جسم اور روح دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی انسان کو جسم جو ظاہری ہے ہمارا اور روح جو ہمارا باطن ہے اور ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مماثلت اور ریزمبلنس رکھی ہے جسم میں اور روح کے اندر کہ تقریباً ایک ہی طرح ہے. جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کو جاننے کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بعض بیماریاں اتنی پوشیدہ ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو, اسکین کرتے ہیں, ایکس رے کرتے ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں کبھی فائنڈ آؤٹ کیا جائے کیا بیماری ہے اس کی, آخر پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ بندہ صحت یاب ہو جائے. اسی طرح روح کا معاملہ ہے, باطن کا معاملہ ہے, ہمارے اندر کا معاملہ ہے. اس کے اندر ہی بہت خطرناک بیماری ہے. اللہ نے قرآن میں اس کے تحت کئی مقام پر ارشاد فرمایا فی قلوب مرض فزادہم مرضا, جس طرح اس ظاہری جسم کی بیماری پہ ہم توجہ نہیں دیں گے تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر باطنی کی بیماریوں کی طرف تم توجہ نہیں دو گے, فکر نہیں کرو گے تو وہ بھی بڑھے گی. تو نتیجہ کیا ہے کہ جیسے جسم کی بیماری ہوتی ہے اور اس کی توجہ نہ کی جائے بڑھ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے انسان کی, مر گیا. لیکن روح کی بیماری ایسی ہے کہ اگر انسان اس پہ توجہ نہ کرے اور وہ بڑھتی چلی جائے تو موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کا تو اینڈ موت پر ہوتا ہے, اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جہنم پر ہوتا ہے, جہنم کی آگ پر ہوتا ہے. تو یہ بیماری بہت خطرناک ہے. جیسے زہری بیماری پتہ لگنے کے بعد آدمی فکر مند ہو جاتا ہے, تفکر کرتا ہے, بھاگتا ہے, علاج کراتا ہے, جو کرنا چاہیے تو علاج کرائے گا. اسی طریقے سے عقل مند لوگ جو قرآن کو سمجھ جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ آخرت ہماری منزل ہے, موت یقینی آنی ہے, عذاب قبر کے بھی ہوں گے, موت پہ بھی ہوں گے, ایک ایک لمحے کا عذاب ہوگا ہمارے پر. اور وہ عذاب آئیں گے کہاں سے؟ خود تو نہیں بنیں گے, وہ کہاں سے کریٹ ہوں گے عذاب؟ کیا فارمیشن ان کی پیدائش کہاں سے ہو جائے گی ایک دم قبر میں جاتے ہی؟ موت کے وقت کہاں سے آ جائیں گے عذاب ایک دم انسان پر؟ وہ عذاب وہی ہوں گے, انہی بیماریوں کے نتیجے ہوں گے جو ہم نے صحیح نہیں کیے ہوں گے, جن بیماریوں کی ہم نے فکر نہیں کی ہوگی, یہ انہی کا نتیجہ ہوگا جو مرنے کے بعد آئے گا. جو ان باتوں پہ یقین کر لیتا ہے قرآن کے تو پھر بہت فکر مند ہو جاتا ہے انسان. اور جب فکر مند ہو جاتا ہے تو جیسے وہ آدمی بھاگتا ہے علاج کے لیے, تب وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے بھائی میں اپنا علاج کراؤں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو تزکیہ کہتے ہیں. بولیں سبحان اللہ, اللہ نے اس پہ بھی انتظام کیا ہے. اس علاج کا نام ہے تزکیہ, اصلاح, اصلاح باطن. تو اس کا بھی بھاگ بھاگتا ہے آدمی, پھر سوچتا بھائی مارے گا یہ تو इसको फाइंड आउट नहीं करूंगा तो खत्म हो जाएगा मामला, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। फिर वो उसे भागते तो अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह अपना फजल भी फरमाते हैं, उस आदमी की मदद भी फरमाते हैं, आमानत भी करते हैं कि समझ गया मेरी बात, ये भाई वाकई इसको यकीन आ गया कि अल्लाह मौजूद है और मरना भी है। तो वो आदमी जब इस तरफ चल पड़ता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं, और इस इलाज का नाम जो है तस्किया है। इसके भी अल्लाह ने बहुत से डॉक्टर पैदा किए हैं, जैसे इसके इलाज के डॉक्टर हैं, इनके जैसे सर्जन है और कंसल्टेंट हैं, तो उसके भी अल्लाह ने पैदा किए, उनको मशाहिर कराम कहते हैं। अल्लाह ने उनको ये समझ, ये सोच, ये बूझ, अतिया अल्लाह की तरफ से उनके जहनों में आता है, उनको ऐसे प्रॉटअप करते हैं उन अलूम के साथ अल्लाह ताला उनके जहनों में, उनके कुलूब पर डालते हैं, कि जिससे वो इस दावे पर नहीं कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हो गया या मैं अल्लाह वाला हो गया, नहीं, बल्कि क्या है कि वो फिक्र एक चीज़ का रखते हैं, किसका, मखलूक का। जैसे हम मखलूक की फिक्र रखते हैं ना, या नमाज की तरफ बुलाओ, रोज़े की तरफ बुलाओ, जैसे माशाल्लाह हमारी जमातें काम करती हैं, एक फिक्र है। बाहर निकलते हैं 40-40 दिन बाहर रहते हैं, 3-3 दिन बाहर रहते हैं, जवान भी चलते हैं, औरतें भी चलती हैं, ये क्या है, हमारा फिक्र है। किस चीज़ का फिक्र है, लोग नमाजी बने, लोग सुन्नत पे चले, इस फिक्र के साथ जमातें निकलती हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि वो जो अल्लाह के बंदे हैं, मशायख जिनको कहा जाता है, वो भी इसी फिक्र के साथ दुनिया में निकलते हैं कि इनको हम बातिन की तालीम दें और अंदर के गुनाहों को ख़त्म किया जाए। कोई बुरी बात नहीं, कितना अहम काम है उनका भी, उनका एक काम ये होता है कि जिस तरह ज़ाहिर पर चल रही हैं हमारी बहुत सी दीनी अल्हम्दुलिल्लाह शोबे काम कर रहे हैं, हदीस भी है, कुरान भी है, दारुलूम भी है, ये सारा ज़ाहिर पर चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि ज़ाहिर से भी ज़्यादा अहमियत किसकी है, बातिन की है, क्योंकि ज़ाहिर की सारी इबादत भी कबूल किस पर होंगी, जब हमारा बातिन साफ साफ लेकर जाएंगे, ये भी याद रखें। तो उसकी तो ज़्यादा और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस ये है कि हम उन लोगों की बातें नहीं सुनते। तो छोड़े यार, ये तो डीप बात कर रहे हैं, ये तो यार बड़ा मुश्किल काम, बस अपनी नमाजें पढ़ते रहो यार, बस जो लगे करते रहो, बहुत बड़ा धोखा है, याद रखें, बहुत बड़ा धोखा शैतान ने सुखा है। कुरान कुछ कह रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, युज़क्की हम युअल्लिम किताब अल हिकमत है, युज़क्की हम कुरान कहता है कि मैंने अपने नबी को भेजा किताब की तालीम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिकह के लिए भेजा, और युज़क्की हम तस्की के लिए भेजा। नहीं सुनते, ऐसा धोखा दिया शैतान ने, वो धोखा खुलता है इंसान का, कब्र में जाता है, मरता है, सारे गुनाह सामने होते हैं, सारे गुनाह इंसान की तरफ सामने होते हैं, इतने गुनाह होते हैं कि बस फिक्रमंद हो जाते हैं, सारे अमाल जो हमने किए होते हैं वो भी डम हो जाते हैं, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। क्यों, नमाज में रे आ गई, दिखावा आ गया, बनावट आ गई, हज़ारों चीज़ें आ गई, गुनाह आ गए, नमाज बेचारी क्या करेगी, तो क्या ऊपर भी जाती, दुआई ऊपर नहीं जाती हमारी, इतने गुनाहों में गिर जाते हैं। तो ये तनासब रखा है अल्लाह ने बातिन का और जिस्म का, याद रखे, क्या मज़ा होना चाहिए इंसान का, मज़ा ऐसा होना चाहिए कि उधर नमाज की अदायगी हो तो सबसे बड़ी इबादत है, उस दिन नमाज के बाद हम दुआ से फारिग हों अल्हम्दुलिल्लाह, और बातिन इतना साफ हो कि हमारी नमाज उड़ती हुई अर्श तक चली जाए। ये तनासब है इंसान का, लेकिन जब एक तनासब नहीं रखेगा, एक ही तरफ चलेगा, तो टायर का तो गाड़ी चलती नहीं, वो तो पंचर हो जाएगी, आखिर कहीं जाकर टक्कर मारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी है, असल मकसद जो मैं कह रहा था आज इस तहकीक पर एक उमदा बात आपको पेश करनी है मैंने, क्योंकि तस्के की मजलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप हजरात सब इस फील्ड पर चल रहे हैं कि हम अपने गुनाहों को देखें, अंदरी की चीज़ों को देखें, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये मकसद है ना भाई इसका। तो इसी मकसद के लिए हम बैठे हैं, तो मैं इसी टॉपिक पर कुछ एक आपके सामने अर्ज़ करूँगा, ताकि आप अहमियत समझ गए हैं कि कितनी अहम चीज़ है। तो मैं तवक्का करूँगा आप गौर से मेरी बात सुनेंगे, आज जो बात की जाएगी इसको कीमती समझेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी और आप भी उस पर अमल करेंगे, तब तो फ़ायदा है, क्योंकि कोई तकीर नहीं मैं कर रहा, ना मैं कोई बयानात करूँगा आपके सामने, ना कोई मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं तो एक बुजुर्गों की बताई हुई बातों पर कि उन्होंने क्या इसमें तहकीक की, मशायख ने कि कैसी किसी बीमारियों को पकड़ा है अंदर से, उनकी तहकीक की बात करूँगा आपको, हमें नहीं पता होगा बात, लेकिन अजीब बात है आज जो आपको बयान कर रहा हूँ, उसको जो बयान करने वाले हैं बहुत ही बड़े, यानी दुनिया इल्म के अंदर उनका बहुत बड़ा मुकाम है, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से मैं आपकी बात करूंगा कि उन्होंने एक अपने हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के कौल पेश फरमाते हैं, मामूली चीज़ नहीं है। देखिए कितने बड़े बड़े मुहक्किक हैं। अब उन्होंने किस चीज़ बात की है, बातिन की बात की है, अंदर ये खफी बीमारी का बताया है स्कैन करके। इतनी ज़बरदस्त अंदर बातिन की बीमारी होती है, वो बीमारी ऐसी है कि गुनाह से भी बढ़कर गुनाह है, अंदाज़ा लगा ले। हमें पता ही कोई नहीं, दो दिन को चार बस ठप बताए, क्या गुनाह से बढ़कर गुनाह है, क्या हो की चीज़ हो। रोजमर्रा जिंदगी हमारी होती है, आज हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बोले अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह ताला हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। आज से पहले नहीं थी, ये तो कितना बड़ा करम होगा कि अल्लाह ने एक इतनी बड़ी बीमारी को, कैंसर से बड़ी बीमारी बता रहे हैं कि हम गुनाह तक तो समझते थे गुनाह है, उसी से आदमी का पेशाब निकल जाता है। एक गुनाह के बाद जब सुनते हैं ना कि इस गुनाह की बात ये सजा है, तो उसका तो वैसे ही पेशाब निकल तुम मारेगा भाई, इस गुनाह की ये सजा है, इतनी पकड़ है। तो उधर क्या बताया जाएगा, गुनाह नहीं बल्कि गुनाह से बढ़कर गुनाह है, जो गुनाह की सजा दी जाएगी उससे भी बढ़कर सजा दी जाएगी। है क्या चीज, बिल्कुल बातन की आप देखेंगे, वो कैफियात है इंसान की, हालत इंसान के अंदर पैदा होती हैं वो चीजें, तो उनको कंट्रोल करना है। फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई बात अंदर की बीमारी के बारे में, पहली चीज तो ये फरमाई, बड़ी गौर तलब चीज दोस्तों, कि इंसान जब गुनाह के वक्त, गुनाह करते वक्त, जिस वक्त गुनाह कर रहा होता है, उस वक्त जिस वक्त गुनाह करता है, उस वक्त इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे भी शर्म व हया के अंदर जब कमी हो जाए, तो ये गुनाह से बड़ा गुनाह है, एक कैफियत का नाम है। जब इंसान जिस वक्त गुनाह कर रहा है और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे भी शर्म व हया में कमी हो जाए, तो ये कमी जो है ये गुनाह से भी बड़ा गुनाह है, वो जो गुनाह कर रहे हैं उससे भी बड़ा गुनाह है, जो ये कैफियत इंसान की होती है। बताया यानी हम मिसाल में आपको क्या दूं कि एक शख्स, एक इंसान, एक बच्चा, एक आदमी, एक औरत गुनाह कर रही है जिसको अल्लाह ने कहा ये गुनाह है, और गुनाह के वक्त इर्द गिर्द लोग, मिसाल ले लें घर में हम कौन हो सकते हैं, माँ बाप बहन चाचा बुजुर्ग यही होते ना घर में, कहते उन लोगों की भी शर्म हया नहीं उसको रही, उसमें भी कमी हो गई है, परवाह नहीं रहे, गुनाह कर रहा है उसको शर्म नहीं आ रही कि मैं किसके सामने गुनाह कर रहा हूं, मुझे कोई क्या कहेगा, बस लगा हुआ है पता नहीं। और अगर कोई उसको एहसास भी दिला रहा है, किसी ने कह भी दिया कि तुम क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो बजाय इसके कि उसको शर्म आए, हया आए या कुछ समझे, बल्कि उसमें और रिएक्शन उसका हो जाए, मार धाड़ पे आ जाए, बदतमीजी पे आ जाए, तो फरमाया ये एक ऐसी कैफियत है इंसान के अंदर, अगर जब ये कैफियत पैदा हो जाए तो समझो ये शख्स जो है गुनाह ही नहीं कर रहा बल्कि क्या है, गुनाह से भी बदतर गुनाह है, अफजल गुनाह इसने किया है। बताएं हम अपने माशरे की तरफ गौर करें, अपने माशरे की तरफ गौर करें कि कितने ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त रात और दिन हमारे सामने होती हैं, और खुद ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जिस वक्त इंसान गुनाह करता है वो आम चीज समझता है, नहीं ये तो यार आम सब दुनिया कर रही, तो मैं भी कर रहा हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है यार, हम कर लेंगे, ये तो यार बस ही कह दिया गुनाह है, कुछ गुनाह नहीं। एक सहाबा का कौल है रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खालिद बिन उमैया अब्बास का रज़ी अल्लाह ताला कौल है कि हमारे जमाने में जो गुनाह जिनको हम पहाड़ के बराबर समझते थे, तो आज जमाना उसको एक नुक्ते के बराबर समझ रहा है, एक नुक्ता, उसको कोई परवाह नहीं है कि गुनाह है या नहीं है, बल्कि शर्म हया ही नहीं, बेटी को बाप से शर्म नहीं, बाप को बेटी से शर्म नहीं, दोनों ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनको पता ही कुछ नहीं, ऐसे हालत में है, ऐसी जगहों पर है कि जिसके अंदर कोई शऊर पैदा हो गया اس کے اندر جاگ گیا تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں انسان جن میں آ گئی ہے حیا آ گئی ہے, لیکن ان کو پتا نہیں کہ بھائی اس میں کوئی معاملہ بھی ہے کچھ ہے نہیں, یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو فرمایا یہ جو کیفیت انسان میں اتر آئے گی یا معاشرے میں آ جائے گی یا سوسائٹی میں آ جائے گی یا تمہارے حالتوں میں جب یہ کیفیت اتر گئی کہ اب تمہیں کسی بزرگ کی بھی شرم حیا نہیں رہی, کسی بڑے کی بھی شرم حیا نہیں, بلکہ کیا ہے کہ اگر کوئی منع بھی کر رہا ہے استاد کوئی منع کر رہا ہے, یہ اب کیفیت اس زمانے کی طرح سی ہے, باپ تو باپ منع کرے یا ماں منع کرے یا اور کوئی بزرگ منع کرے یا خود اس کا استاد منع کرے یا کوئی بہت بڑا باعمل عامل منع کرے یا خود اس کا شیخ بھی آج منع کرے, اس کا پیر بھی منع کرے, تو وہ بھی ڈرتا ہے منع کرتے ہوئے کہ کہیں یار یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. ان اللہ ولی راجعون, آج وہ بھی ڈر رہے ہیں جو ریفارم کرتے ہیں, جو لوگوں کو بتاتے ہیں, جن کو آپ پیر سمجھ لیں شیخ سمجھ لیں, اس کی بھی صحیح بات سے لوگوں کو مرچیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں, اب وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اندر سے بغاوت ہو جاتی ہے ان کی کہ وہ ٹوائلٹ نہیں کرتے اس بات کی کہ ہم اس چیز سے کیوں منع کیے. تو فرمایا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہو جائے گی تو اس سے تمہیں کیا کرنا ہے, بچنا ہے. اگر جی تم دیکھ رہے ہو ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے, موجود ہو گئی کہ ہم کسی کی بات پہ شرم ہی نہیں, ہمیں حیا ہی نہیں, ہمیں کیوں روکا گیا, ہمیں کیوں منع کیا گیا, خود تو ہے ہی نہیں لیکن منع کرنے پہ نہ جائیں, تو فرمایا یہ بہت بڑی کیفیت ہے. اللہ معاف فرمائے دوستوں, جب یہ کیفیت اتر جائے انسان میں تو سمجھ بہت خطرہ ہو گیا, اب گناہ کی سزا نہیں ملنی بلکہ کیا ہے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے. دوسری چیز بتائی, یہ بھی عجیب چیز ہے, بہت عجیب چیز ہے, کیا تحقیق کے اندر کی آپ دیکھیں, یہ موتی ہیں سبحان اللہ ان لوگوں کے لیے جو اس فکر میں کے اندر ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح صحیح کر لیں, جو تسکیے کے لیے بھاگ رہے ہیں لوگ, یہ موتی ہیں, پرلز ہیں خدا کی قسم کہ سبحان اللہ نے کیا چیز بتا دی, کیونکہ ہم تو اس چیز کو سمجھ نہیں رہتے, اتنا ڈیپ بتائی اس علاج کو, کتنا آخرت سے بچا رہے ہیں سبحان اللہ. فرمایا ایک چیز اور بتائی, یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے میں یہ عجیب چیز ہے کہ گناہ کرنے میں جو کامیابی ہو جاتی ہے آدمی کو, اس کے بعد جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے وہ گناہ سے بھی پڑھ کر تھوڑا ایکسپلین کر دوں شاید اس کو, کہ گناہ کرنے میں جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے انسان کو, یہ اس سے بھی گناہ ہے, بڑا گناہ ہے جو تو گناہ کیا ہے. مثال عام معاشرے کی بات کرتا ہوں, لاٹری ڈالی کسی نے, لاٹری حرام ہے یا نہیں اسلام میں, برا ہے یا نہیں, ٹھیک. اب اس نے لاٹری ڈالی, لاٹری نکلائی, خوشی ہوگی یا غم, خوشی. اس خوشی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تو گناہ ہے ہی, لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کامیابی میں جو خوشی حاصل ہوئی ہے تجھے, یہ کیا ہے کہ اس گناہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے جو تو سمجھ رہا ہے تجھے خوشی آنا. اب اس کو آپ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, کوئی لون کے لیے کام کر رہا ہے یا کوئی ایسا حرام کام کیا ہے, ٹیکس والا آگے پکڑنے والا یا کچھ اور پکڑنے والے آگے, اس سے بچ گیا, بڑا خوش ہے, ہاں کامیابی ہوگی. یعنی زندگی کی دیکھیں معاملات, ایک عجیب کیفیت بتائی ہے, بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پارسا اور نیک اور بڑے بڑے لقابوں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, ایسی کیفیت بتائی ہے اندر سے کہ اس کا بالکل صاف سکین ہو جاتا ہے کہ بھائی تو کس پوزیشن کو دیکھ لے, کہ جب کسی گناہ کے اندر کامیابی ہو رہی ہے اس کو, اس کامیابی اس کو خوشی ہو رہی ہے, غلط کلیم کر دیا, گاڑی کی ٹکر ہوئی, غلط کلیم کیا, اس سے پیسے مل گئے, خوشی ہوگی یا رنج ہوگا, خوشی. اور کیا ہے, بہت نیک آدمی ماشاء اللہ الحمدللہ سب نیک کام کر رہے ہیں, لسٹ لیتا ہوں اس کے نیک کاموں کی تو حد ہی کوئی نہیں ہوگی جو اس نے کیے ہوں گے. نہیں, ایک صحابی کیا بتا رہے ہیں کہ خبردار تو اتنے گندے اس کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ جب تو مرے گا بیوقوف گناہ کی سزا نہیں بلکہ گناہ سے بڑا تیرے پاس گناہ ہوگا جس پہ تو رگڑا جائے گا. کتنا بڑا چیز بتائیے, خبردار کبھی انسان یہ نہ کرے, ایک تو گناہ ہی نہ کرے اور گناہ ہو جائے تو بجائے خوش ہونے کی مجھ سے کیا ہو گیا, استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ تعالیٰ یہ کیسی کیفیت میری ہو رہی ہے, میں کیسے انسان ہوں, ایک تو میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں, اس نافرمانی پہ یہ میں اس کو کامیابی تصور کرتا ہوں, یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے, ظاہر ہے تو آگے والی بات ہے کہ نہ اس میں برکت ہوگی نہ کچھ ہوگی ایسی چیزوں کے اندر. تو فرمایا اگر کسی گناہ کے اندر خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ, कि कामयाबी होगी मुझे, असल में कामयाबी नहीं है बल्कि क्या है, बहुत बड़ी नाकामी है आखिरत की लिहाज से। आगे ये भी अजीब बात कि गुना करना चाहता आदमी, गुना ना कर करने में नाकाम हो गया, वो गुना करने में नाकाम हो गया, वो नहीं कर सका, तो उस पे जो उसको रंज और अफसोस होता है, फरमाइए गुना से भी बड़ा गुना है। अजीब चीज है, देखिए गुना करना चाह रहा है वो और वो उस वक्त गुना नहीं कर सका, तो उसके बाद क्या होता है, रंज होगा ना, या मुझसे काम क्यों नहीं हो, फरमाए यू तो रंज कर रहे बेवकूफ, ये तेरा रंज करना पछताना जो है उस गुना से भी बढ़ गया जो तूने गुनाह किया। मिसाल दूं, आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं बहुत खराफात हैं, गंदी है, गैर शरीय जगह है, और आप टिकट खरीद रहे हैं लेकिन आपको टिकट नहीं मिला उस जगह का, आप भागे टिकट लो कि मैं भी उस जगह शामिल हो जाऊं, उसका टिकट नहीं मिला, खुशी होगी या रंज होगा, रंज हो रहा है यार मैं क्यों नहीं गया, इस कैफियत बताया जा रहा है कि जब भी इंसान कोई गुनाह का काम करना चाहता है और गुनाह काम नहीं हो रहा उससे, है गुनाह का काम, किसी गुनाह के काम में शामिल होना चाहता है, एक कारोबार ऐसा करना चाहता है जो हराम है बिल्कुल, उसके लिए उसने एप्लीकेशन दिए सब कुछ दिए कि मुझे काम दिया जाए और है हराम काम और उसको मंजूर नहीं हुआ वो काम अल्लाह के फजल से, तो वो कितना अफसोस कर रहा होगा, यार बड़ा अफसोस हो गया मैं इस काम पर, ये मुझे मिल जाता तो क्या था, किसी लोन के लिए अप्लाई किया उसने सूद पर और सूद नहीं मिला, अफसोस कर रहा है यार मुझे सूद नहीं मिला, या कोई ऐसा ऐसी चीज प्रॉपर्टी ले रहा है जो हराम है जिसमें सूद इस्तेमाल करना चाहता है उसको नहीं मिला, ये मैं मोटी मोटी मिसाल देता हूँ, जिंदगी में आम है हमारी चीजें, ये नहीं छोटी मोटी, बहुत चीजें ऐसी जो हराम काम की तरफ इंसान हाथ उठाता है और उस काम में अल्लाह उसको रोक देता है वो नहीं होता, तो उसमें क्या होता है इंसान को अफसोस रंज हो रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुभान अल्लाह ये जो अफसोस तेरा ये तो उससे बढ़कर है जो तू गुनाह करना चाहता था, वो कैफियत तो उससे बढ़कर है। और एक और चीज बताई भाई, वो भी अजीब चीज, मसरूफ गुनाह है कोई इंसान, मसरूफ समझते हैं किसी गुनाह में मसरूफ हो गया, गुनाह में लग गया, और जिस वक्त गुनाह में लग गया तो पर्दे की आहट से भी, अजीब कितनी डीप चीज है कि पर्दे की आहट से भी किसी आदमी के पांव की चाप से भी वो दिल हिला, उसका खौफ है, डर आ रहा है, तो उसने अल्लाह तो क्या फरमाया, नहीं फरमाया कि ये जो खौफ है तेरा उस वक्त जिस वक्त तू गुनाह कर रहा है और गुनाह के वक्त एक आहट भी तेरे लिए बड़े खौफ पैदा कर रही है, आ तो नहीं गया, वो देख तो नहीं रहा, पता तो नहीं चल गया, ये कैफियत पे इंसान दिल धड़कता है ना, उसका खौफ आता है ना, तो उस खौफ को फरमाया कि ये खौफ जो तेरे अंदर है इस वक्त गुनाह करते हुए, तू डर रहा है, घबरा रहा है गुनाह करते हुए, हर चीज से डर लगा कि जल्दी जल्दी गुनाह मैं करूं कुछ देख ना ले मुझे, तो क्या है फरमाया कि ये जो गुनाह के बाद खौफ है तेरा, गुनाह करते वक्त मसरूफ गुनाह है और ये खौफ पैदा हो रहा है, ये उस गुनाह से भी कई गुना बढ़ गया जो तू गुनाह कर रहा है। इसकी मिसाल दूं, मिसाल के आदमी चोरी करना चाहता है, आया वो यहां से कुछ चोरी करना चाह रहा है, अब जो चोरी करेगा क्या ख्याल होगा उसका, खौफ है ना उसके अंदर, ख्याल है ना उसके अंदर, उस खौफ का ख्याल को फरमाया कि ये खौफ जो है हकीकत में क्या है कि उस गुनाह से बड़ा ये तू कर रहा है। चार चीजें बताएं, अब बताएं कितनी बड़ी बीमारी है, अल्लाह ना करे हमारे में मौजूद हो, लेकिन एक दफा तस्जियत वो आदमी कर ले दोस्तों, एक दफा अपने आप गौर तो करे कि कभी ये कैफियत हमें होती है, ऐसी बात कि गुनाह कर रहे हो हमें खौफ और डर हो कि भाई ये तो यार ये कोई देखने नहीं लेगा, बस क्या जैसे बस पता ना चले किसी को, यार नदी कर जो काम पता ना चले, और ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। अब इन चारों चीजों को जमा कर रहे हैं, ये गुनाह से बड़ा क्यों गुनाह हुआ, अजीब चीजें देखी हैं अल्लाह वालों की बातें अजीब होती हैं, देखें कैसे तहकीक की उन्होंने, ये गुनाह से बड़ा गुनाह क्यों हो गया, क्योंकि सारी अंदर की बातें हैं और ये गुनाह से बड़ा गुनाह इस वक्त ऐसे हुआ है, इस हालत में हुआ है कि हकीकत में उसको ये यकीन नहीं है कि अल्लाह उसको देख रहा है, बोले सुभान अल्लाह, इस यकीन में उसके कमी है, अगर उसको यकीन होता कि अल्लाह खबीर और बसीर है तो कभी उसको सोच ही नहीं सकता था कि मैं गुनाह करूं। ये सारी जो कैफियात पैदा होती हैं उसमें गुनाह के वक्त करने के बाद, ये हकीकत में उस वक्त हो रही है कि जब उसको अपने अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, वो खबीर भी है, वो बसीर भी है, वो देख भी रहा है, उसको पता भी है, नहीं 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 मानता है वो अल्लाह है, मानता है कि मेरा अल्लाह है, मानता है कि अल्लाह मौजूद भी है, लेकिन उसके यकीन में अभी तक वो दर्जा नहीं आया कि जान जाए कि अल्लाह देख रहा है, ये तू क्या काम कर रहा है, तू एक पर्दे से तो आवाज से डर रहा है, तो एक आहार से डर रहा है, लेकिन उस रब से नहीं डरा जो देख रहा है तुझे, तू काम क्या कर रहा है। तो इन तमाम चीजों का इलाज किस में मिलता है, आप गौर से सुन लें, इलाज किस पर मिलता है, इस चीज पर कि हम अपने यकीन को इस दर्जे पर ले जाएं कि अल्लाह हमें, हाँ शाह, इसका नाम है तस्किया। कैसी खूबसूरत बात है। अब मेहनत हमने किस पे करनी कि ये जो कैफियात जो हम पर आ रही हैं, हम देखें जब किसी हकीम के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नस पकड़ के जड़ देखेगा, इसको बीमारी क्यों है, भाई पेट में दर्द क्यों है, इसकी क्या वजह है, कोई नस बंद है क्या है, वो फाइंड आउट करेगा उस चीज को क्यों है। सुभान अल्लाह, इस रूहानी इलाज में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कैसी कैफियत के साथ ये बात बताई है कि असल चीज देखो इसमें कि वजह क्या है कि तुम चार गुनाह कर रहे हो, तो जो चार कैफियतें तुम्हारे अंदर पैदा होती हैं गुनाह के वक्त, जो गुनाह से भी बड़ी गुनाह है, इसको खत्म करना चाहते हो तो उस चीज को देखो जिसकी वजह से गुनाह पैदा हुआ है। तो गुनाह उस वक्त पैदा हुआ है कि तुम अल्लाह को मानते तो हो, जानते तो हो, लेकिन तुम्हारा यकीन नहीं है। तो तुम्हें चाहिए उस यकीन को बढ़ाओ अपने, क्या तुम समझोगे वह माँ को मई ना माकुन तुम, अल्लाह तो मेरे साथ है, इस पे मेहनत करनी है। ये है तो युजक की अल्लाह के नबी समझा, इस पे मेहनत करो, जैसे कुरान को हासिल करने में मेहनत करते हो, फिका को हासिल करने में मेहनत करते हो, इल्म जाहिर पे मेहनत करते हो, अल्लाह ने युजक की इस इल्म के भी मामले में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वरना क्या है कि तुम्हें बहुत सख्त अजाबों से वास्ता पड़ेगा, बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह के पास जाओगे तो सारा तराजू इसी पर तोला जाएगा, तुम्हारा बातिन क्या है। बताओ, मैं कल्ब सलीम कुरान कहते हैं कामयाब वो लोग होंगे जो कल्ब सलीम लेकर आएंगे, सच्चे दिल लेकर आएंगे, अंदर के बातें चमकते लेते आएंगे, अल्लाह उस वक्त वो लोग कामयाब होंगे। तो ये मेहनत है, अगर उस पर हमने मेहनत नहीं की तो कल पछतावा होगा। जकी तस्किए पर हम मेहनत की, मेहनत इस पर करनी है तमाम कैफियत पर कि हमारे अंदर वो चीज पैदा हो जाए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हमारी कैफियत ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब आपकी कैफियत ये पैदा हो जाए कि यार पुलिस वाला मुझे देख रहा है, आप ड्राइव तेज करेंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं पीछे शीशे में देख रहे हैं, पुलिस देख रही है, पुलिस कभी ड्राइव नहीं करेंगे। बेशक आपने हॉस्पिटल जाना है, किसी मरीज को देखने जाना है, या किसी को इमरजेंसी में आप ले जा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा क्यों, पुलिस देख रही है। इसी तरीके से जिस इंसान में ये शऊर पैदा हो गया कि मेरा रब मेरा मौला मुझे देख रहा है, तो किसी हालत में कितनी इमरजेंसी हो जाए वो हराम काम नहीं करेगा। भले सुभान अल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता, कितनी मजबूरी है, भूखा मर जाएगा क्या, हराम नहीं खा सकता, मेरा रब देख रहा है, भूखा मर जाऊं, कितने उसको खूबसूरत से खूबसूरत औरत सामने नजर आए, नंगी से नंगी औरत नजर आए, वो कहेगा नहीं बाबा सामने मैं जो कुछ भी आ जाए अपनी आंखों को नहीं उठाऊंगा, मेरा रब मुझे देख रहा है। तुम तमाम गुनाहों की जड़ निकाल देता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर इंसान ये कैफियत को अपने उभार ले इस तस्किए के अंदर, ये कैफियत पैदा हो जाती है। अब अगला सवाल, तस्किया कैसी की जाए, ये कैफियत कैसी पैदा की जाए कि हमारे में ये कैफियत पैदा हो जाए कि हमारे अंदर ये चीज पैदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसी, इसमें हम किस तरह चले, अल्लाह वालों ने सारे कुरान हदीस से बताया कि हर चीज की जड़ तो क्या है, कल्ब है, सारी कैफियत तो कल्ब में पैदा होती है। कुल्लन सकीला तुम, हर चीज को सकालतुन, हर चीज के अल्लाह ताला पॉलिश साफ करने की चीज पैदा की है। सकालतुल कल्ब जिक्र अल्लाह, हज़रत मोहम्मद ज़िक्रिया रहमतुल्लाह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल के अंदर बड़ी वाज़ह इस हदीस को लिखा है, आप में पढ़ते भी हैं फ़ज़ाइल आमाल में, बड़े अच्छे मज़मून को इन्होंने बताया है, हज़रत शेख़ हदीस रहमतुल्लाह ने इस बात को बयान किया है कि इब्तिदा यहाँ से करे इंसान, पहले संजीदगी अख्तियार करे कि वाकई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे मुझे तय करना है, वरना मेरे ज़ाहिर के आमाल जो हैं बिल्कुल फ्यूज़ हो जाएंगे। उनका हालत कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ, ज़ाहिर आमाल की हालत कैसी होती है, जैसे अब ट्यूब लगा दें आप, ठीक है, हम सब इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब। लाइट इसकी ऑफ करते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, ट्यूब। नहीं, एक बल्ब है जल रहा है, मैं ये क्या चीज बल्ब, ये मुझसे पूछे क्या है, मैं कहूँ जी बल्ब फ्यूज हो गया, लाइट नहीं है, मुझसे पूछेंगे क्या चीज है, मैं क्या बताऊंगा उसको, बल्ब, बल्ब कहूंगा उसको, कोई और नाम तो नहीं दूंगा। बात यही है ना कि जल रहा है तब भी बल्ब है, और नहीं जल रहा तब भी बल्ब है, लेकिन फर्क क्या है कि जल रहा है तो रोशनी दे रहा है, सुभान अल्लाह बोले, और नहीं जल रहा तो अंधेरा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, बस ये जो अमाल है हमारे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्र, जितने कुछ हैं, ये क्या है? हमारे अमाल हैं, अमाल हैं, जैसे हम कह रहे हैं ट्यूब है, ये क्या है? अमल है, नमाज अमल है, हज अमल है, सब कुछ अमल है, हमारा अमल है। लेकिन अगर उसमें रोशनी है, बोले सुभान अल्लाह, अगर उसमें रोशनी है तो फिर क्या है? वो रोशन अमाल है। अगर उनमें अंधेरा है तो अंधेरे अमाल है। बात समझे नहीं समझे? तो इसी तरह हम इस चक्कर में हैं कि हम तो अमाल कर रहे हैं, लेकिन ये तो पूछो क्या बातन तुम्हारा रोशन हो गया जो उसको रोशन कर रहा है? क्या वो करंट मौजूद है इसमें मीटर में कि जो उसको लाइट दे रहा है? तो क्या तुम्हारा बातन संवर गया है कि जो तुम्हारी नमाज को रोशन कर दे, तुम्हारे हज को रोशन कर दे, तुम्हारी उम्र को रोशन कर दे, तुम्हारे कुरान को रोशन कर दे? इसकी तो हमें ध्यान ही नहीं है, बस बल्ब है जी, ये रोशनी दे रहा है बल्ब। तो यही वजह है, इतना जरूरी अहम टॉपिक है। तो क्या है पहला स्टेप? इसमें यह बताया गया तस्किए की तरफ इंसान पहले संजीदा हो जाए। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई बात आपको? नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तस्किए की कोशिश करना जरूरी है या नहीं है? आवाज हल्की आ रही, समझ जरूरी है या नहीं है? बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी हर मुसलमान को समझ चाहिए, हर औरत को, हर मर्द को समझ चाहिए। उसके क्या है पहला स्टेप बताया गया है, जो बताया कुरान ने बताया, अस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून। अगर तुम फला चाहते हो, अल्लाह कह रहा है फला, फला से मुराद क्या है कि अगर तुम फला चाहते हो यानी तुम ऐसे चाहते हो कि तुम आओ मैं तुम्हें सीधे जन्नत में भेज दूं, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वादा कर रहा है तुफ्लहून कि अगर तुम ऐसी चीज चाहते हो, तुफ्लहून को मामूली बात नहीं, अल्लाह कह रहा है कि तुम अगर ऐसी कामयाबी चाहते हो कि कोई हिसाब किताब तुम्हारा हो ना कब्र में ना इधर ना उधर, अगर तुम ये चीज मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तुम चाहते हो पसंद करते हो कि कब्र में से छुट्टी, रशर में छुट्टी, पुरुष रात में छुट्टी, बस तुम मरो और मैं तुम्हें सीधा जन्नत में भेज दूं, अल्लाह में ताकत है या नहीं दोस्तों? है तो बोलो सुभान अल्लाह। तो वो रब कह रहे हैं कि मेरे तो ताकत है, मैं कर सकता हूं, तुम चाहते हो या नहीं चाहते? कि जी हम तो चाहते हैं अल्लाह, हम कहते हैं तो बस कुल्ला कसीरा, फिर मेरा जिक्र कसरत के साथ करो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। इसमें क्या झगड़ा है? कोई झगड़े की बात है दोस्तों? तीसरी बात है, अच्छा जी अगर हम जिक्र करें जी हम कुरान ना पढ़े, कि ये किसने कहा है? अल्लाह कहता है ये कुछ किसने कहा है कि तुम जिक्र को कराना? अच्छा जी हम अगर जिक्र करें तो फिर हम ज़कात ना दें, ये किसने कहा है? जी अगर हम जिक्र करें तो हम तबलीग में जाएं, ये किसने कहा है? ये हम अगर जिक्र करें तो जनाब हम फलां काम ना करें, ये किसने कहा है? अल्लाह कहता है मैं तो कह रहा हूं बस करो कसीरा, सारे काम करो लेकिन अल्लाह के जिक्र को कसरत के साथ करो। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं नमाज पढ़ो, पांच वक्त पढ़ो बस खत्म, अल्लाह कहता है बहुत है, कबूल होगी हर पांच वक्त की नमाज भी तुम इंसानों की तरफ पढ़ लो तो हर नमाज तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। सही तो हो नमाज तुम्हारी, बस जिंदगी में एक हज कर लो, अल्लाह कहता है बहुत काफी तुम्हारी, वो हज ही तुम्हें बख्शा दे, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बार बार हज करने की। 30 रोजे रख लो, अल्लाह ताला कहता है मेरे फर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, 30 रोजे तुमने अच्छी तरह रख लिए उस हिसाब से जो रखे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का जरूरत ही नहीं, मजे करो मजे करो। अल्लाह कहता है 5 नमाजें सुभान अल्लाह, जिंदगी का एक हज, जकात के काबिल तो जकात। अल्लाह ताला कहता है ये तुम काम करो जो मैंने फैज तुम पे की, अगर कोई ये 4-5 काम कर लेते हैं, अल्लाह कहता है मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जन्नत की। ये तुम पे अगर हिम्मत तो कर लो, जितना और कमा सकते कमाओ, लेकिन ये 5 वक्त भी इतनी बड़ी अल्लाह ताला ताला दे। लेकिन फरमाए इन तमाम काम, इन तमाम इबादत को उस तक ले जाने के लिए को कबूल हो जाए मेरी बारगाह में और तुम्हें निकाल दें, एक चीज करना पड़ेगी, वो क्या है? वस्कुरुल्लाह कसीरा, जिक्र के मामले ये नहीं कि जनाब 10,000 कर लें, नहीं, जिक्र का मामला ये है कि कसीरुन कसीर, वहां आप डंडी नहीं मार सकते, अल्लाह ताला कहते हैं वहां मैं कोई तादाद नहीं दूंगा। आखिर फिर भी कितना करें? फरमाया इतना करो कि हर सांस के साथ मेरा नाम निकले, बोले सुभान अल्लाह। किसको बता रहे हैं? मौज बिन जबल को, कितने बड़े सहाबी थे। तो या रसूल सल्लम मुझे कोई आखिरी नसीहत फरमा दें, अमल तो हो गए, आपने शरीयत ही बता दी, अमाल भी बता, फजाइल अमाल में आपने सब कुछ बता दिया, अब कोई ऐसा अमल बता दें कि शॉर्टकट भी हो जाए, काम मेरा बन जाए पूरा, सुभान अल्लाह। यानी एक सहाबी के अंदर कैफियत देखें कि तमाम कुछ बताने के बावजूद मुतमईन नहीं हो रहे थे, बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि उम्मत को कुछ और पहुंचाना चाहते थे, वो हमारे खैर वाली बात थी। इमाम अल-अंबिया से सवाल करना, अर्ज करना बहुत बड़ी बात थी, क्या फिर भी कोई बताई दें जी कोई चीज़। हमारा जैसे कह जी आधी बात सुन के बाकी बात जी काफ़ी, हमने सुने नहीं जी बाकी बात, اتنی سنی اس پہ عمل کریں گے. لیکن کیا حرص تھی ان کی آخرت کی, کیا شوق تھا آخرت کا صحابہ کرام کو. کہتے ہیں جی ابھی دل نے کچھ اور بتا دیں ایسی کہ جی بس بالکل معاملہ صحیح ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, کچھ نہیں فرمایا, بس ایک بات فرمایا, شرائط کے سارے بتاتے, شریعت کے سارے مسئلے بنانے کی بات فرمایا, بس ایک کام کرنا نماز, کہ اتنا ذکر کرنا, اتنا ذکر کرنا کہ جب تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیرے منہ پہ ذکر ہی ہو اللہ تعالیٰ. یہ معاملہ ہے بھائیو, اس پہ محنت کرنی چاہیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو, صبح شام دوپہر ادھر, پھر کسی اللہ والے سے ملیں, کسی شیخ سے ملیں, اسے جا کے اپنے پروگرام بتائیں. یہ جب آدمی سیریس ہوتا ہے تو کرتا ہے نا, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی حالت بتاتا ہے, جناب میری ہے یہ بیماری ہے, کسی شیخ کے پاس جائیں, کسی اللہ والے کے پاس جائیں, بتائیں حضرت میرا یہ کام ہے, صبح میں یہ کام کرتا ہوں, میں فیکٹری چلاتا ہوں, یہ کرتا ہے, انشاءاللہ اس کے مطابق وہ آپ کو ایسا پروگرام دے گا کہ آپ کی دنیا بھی چلتی رہے گی اور آخرت بھی بنتی رہے گی. کوئی نہیں چاہتا کہ انسان بھی تو دنیا میں رہنا ہے, یہ پیٹ بھی لے کر آئے ہیں, بل بھی دینے ہیں, مکان بھی چلانا ہے, بیوی بچوں کی شادی بھی کرنی ہے, سب کو پالنا بھی ہے, اتنے بڑے بڑے ٹیکس دینے ہیں, اس کا مطلب گھر کو بیٹھے ذکر ہی کرتے رہے. نہیں, اللہ نے کہا میں ایسا انتظام کروں گا کہ سب کام بھی تو کرتا رہے گا, میرا ذکر بھی چلتا رہے گا. پھر بولیں سبحان اللہ. چاہتے ہیں آپ یہ لوگ, چاہتے ہیں ایسا نا, یہ زندگی چاہتے ہیں, تزکیہ چاہتے ہیں, دیکھ لیں اللہ کے سامنے وعدہ تو کریں جی ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ رستہ کھولے اللہ پاک ہمارا. یہ ڈرانے والی جو کیفیت ہے, ڈرنے والی نا ہمت, یہ سب شیطان کراتا ہے. دوزخ کے کام تو اتنی جلدی کرا دے گا کہ ایک منٹ پیچھے وعدہ لینا, ایک سیکنڈ لگے گا فور بڑھا دیتا ہے, لیکن جہاں آتی ہے آخرت کا معاملہ وہاں انسان کو پھس کر دیتا, نہیں یا کہ مصیبت نہ آ جائے, یہ کہیں پکڑے نہ جائیں, یا پھر ہم وہ کیسے کریں گے, یہ کیسے کریں گے, کبھی ایسا نہ سوچے. جس رب نے ہمیں کہا یہ کام کرو, اللہ تعالیٰ اس کی رحمت بھی ایسی ہے کہ ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں. واخ الحمد للہ رب العالمین.